ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गया से 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगले वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में होगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की घोषणा। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया। और प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। हाजीपुर की हवा देश भर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक प्रदूषित रही। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज एक दिवसीय दौरे पर गया आ रहे हैं। श्री गडकरी 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मंत्रालय की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बोध गया के दुमुहान में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं को लोकार्पण होगा उसमें बख्तियारपुर रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग के हसनपुर से बख्तियारपुर तक 4 लेन की सड़क और नालंदा जिले के देवी सराय और बड़ी मठ में लघु पुल समेत अन्य 3 स्थानों पर पुलिया शामिल है। वहीं श्री गडकरी बख्तियारपुर रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग के रजौली से हरदिया तक की 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। नवादा शहर में वारसलीगंज नवादा रेल खंड पर ROB चाकंद गया शहर दो मुहान 4 लेन सड़क चौड़ीकरण तथा मुथेर जहानाबाद शहर गोल बगीचा 4 लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से नवादा गया और जहानाबाद शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राम मांझी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार और श्रवण कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
भारत ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। राजगीर में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से पराजित किया। भारत की ओर से दीपिका ने 31वीं मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से निर्णायक गोल किया। फाइनल मुकाबले को लेकर भारतीय प्रशंसकों में उत्साह चरम पर दिखा। स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने इंडिया इंडिया की गूंज के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाया। भारतीय टीम की स्ट्राइकर दीपिका को टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दीपिका ने चैंपियंस ट्रॉफी के 8 मैचों में सबसे अधिक 11 गोल किए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिला हॉकी टीम को खिताबी जीत की बधाई दी है। राज्य सरकार ने महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों और कोच को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी। श्री कुमार ने कहा कि टीम के सपोर्ट स्टाफ को भी 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अगले वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में कराने की घोषणा की है। कल राजगीर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया।
सबसे पहले तो मैं वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप इंडियन टीम ने जीत ली है, इसलिए मैं भारतीय टीम को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिहार गवर्नमेंट को भी अभिनंदन देता हूँ जिन्होंने इस चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में करा है। और आज मैं घोषणा करता हूँ कि 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में की जाएगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। किया अंतरिम टर्मिनल टेंडर आवंटित होने के बाद 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे पर बनने वाले अंतरिम टर्मिनल का डिजाइन तैयार हो गया है। इसकी चार दीवारी के निर्माण के लिए कल प्राधिकरण और भवन निर्माण विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। पटना मेट्रो निर्माण कार्य स्थल पर पिछले दिनों 2 मजदूरों की मौत के मामले में जांच समिति ने जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रिया के उल्लंघन के चलते दुर्घटना हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य के दौरान अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण कानून का उल्लंघन हो रहा था। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने नगर विकास और आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है। राज्य के 4 शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो रेल की संभावना तलाशने को लेकर चल रहे सर्वे की रिपोर्ट अब दिसंबर महीने में आएगी। सर्वे कर रही एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने इसके लिए नगर विकास विभाग से 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। विभाग ने एजेंसी की मांग स्वीकार कर ली है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर ने प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 2 से 7 दिसंबर तक जिलावार रैली का आयोजन किया जाएगा। बालू के अवैध खनन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में औरंगाबाद के पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका को क्लीन चिट दे दी गई है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी है। साथ ही निलंबन अवधि का पूरा वेतन और भत्ता भी देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2021 में सुधीर कुमार पोरिका को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सागर ने कहा कि वेब्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। वेब्स 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों के साथ सभी दर्शकों को सेवाएं प्रदान करेगा। वेब्स अयोध्या से सीधे प्रभु श्री राम लला आरती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात जैसे कार्यक्रमों का भी सीधा प्रसारण करेगा। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। वहीं राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में हल्की धुंध की स्थिति बनी रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ 25 नवंबर से सक्रिय होगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हाजीपुर की हवा देश भर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 422 दर्ज किया गया। राजधानी पटना समेत कई जिलों में भी वायु प्रदूषण का स्तर घातक श्रेणी में पहुंच चुका है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष DK शुक्ला ने बताया कि हाजीपुर में कचरा जलाने के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय GST की टीम ने पटना में 2 जगहों पर छापेमारी कर 60 करोड़ रुपए से अधिक GST चोरी का मामला उजागर किया है। इस दौरान टीम को कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले हैं। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो किसी कारणवश पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिसंबर सत्र के यूजीसी नेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 जनवरी से आयोजित की जाएगी। राज्य के 6 और पैक्स का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मुजफ्फरपुर के 2 और गया, बांका, रोहतास तथा कैमूर जिले के 1-1 पैक्स का निर्वाचन स्थगित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। अब तक 62 पैक्स का चुनाव स्थगित किया जा चुका है। इधर 5वें चरण के पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए मतदान 3 दिसंबर को होगा। वहीं पहले चरण का मतदान 26 नवंबर को होना है। राज्य के सभी जिलों में एक साथ चले विशेष सुरक्षा जांच अभियान के तहत पुलिस ने 531 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 128 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के नदवा गांव में खेत में पराली जलाने के आरोप में 2 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया पुलिस ने 11 वर्ष पुराने सुमड़ी हत्याकांड मामले में आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अतरी के राजद विधायक अजय कुमार का भाई है। सीतामढ़ी जिले के रेगा थाना क्षेत्र के रमनगरा में अपराधियों ने कछौर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। नवादा जिले के वारिसलीगंज में एसआईटी ने छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगते थे। सीतामढ़ी पुलिस की एक विशेष टीम ने कुख्यात अपराधी विकास झा गिरोह के 2 शूटर समेत 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, महिला हॉकी, भारत तीसरी बार विजेता। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत की चैंपियन बेटियां राजगीर में चीन को 1-0 से पराजित कर बनी विजेता। प्रभात खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है, जहां हैं वहीं पढ़ाते रहेंगे सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, पंजाब में बिहारी मजदूरों के साथ तालिबानी सलूक, सीतामढ़ी के 20 किशोर समेत 32 लोग कपूरथला में बने हुए हैं बंधक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एग्जिट पोल, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा आगे। आज अखबार की सुर्खी है, पटना की हवा हुई दिल्ली जैसी, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गया से 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगले वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में होगा, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की घोषणा। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। और प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, हाजीपुर की हवा देश भर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक प्रदूषित रही। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।